तो आज हम चर्चा आरंभ करेंगे श्री भक्ति रसामृत सिंधु के भूमिका की। हर पुस्तक के पहले एक भूमिका होती है, आप जानते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु के लिए भी श्री रूप गोस्वामी ने एक भूमिका लिखी है। वास्तव में इस भूमिका से प्रथम श्लोक आरंभ होता है श्री भक्ति रसामृत सिंधु का, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। परंतु जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन रूपी ग्रंथ लिखा है तो इसमें उन्होंने इस भाग को भूमिका में रखा है। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, इस भूमिका के तीन भाग हैं। पहला है मंगलाचरण, जिसमें मांगल्य का आह्वान करते हैं श्री रूप गोस्वामी। दूसरा भाग है ग्रंथ विभाग, भक्ति रसामृत सिंधु के कौन से विभाग किस प्रकार से विभाजित हुई है, ये जानकारी श्री रूप गोस्वामी देते हैं। और इस भूमिका का तीसरा हिस्सा है उत्तम भक्ति की परिभाषा। विशेष करके ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम ये नहीं जानेंगे ठीक से, स्पष्ट रूप से, कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस मार्ग में हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक व्यापारी होता है, अगर अपने व्यापार को वो अच्छे ढंग से जानेगा नहीं तो व्यापार ढंग से करेगा कैसे, मुनाफा कैसे कमाएगा। अगर वो किसी चीज को बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उस चीज के बारे में उसे सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि अन्यों को समझाए, फिर वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार से हमारा क्षेत्र है भक्ति। तो भक्ति क्या चीज है, इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। भक्ति के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, तरह तरह की गलत धारणाएं लोगों के मन में रहती हैं। और जनसाधारण जो मासूम है, अज्ञानी है, उनको पता नहीं है कि सही भक्ति क्या है और नहीं है। सुनने में, दिखने में तो सभी एक जैसा लगता है। कई बार ऐसे होता है कि कोई टीवी पे कोई संत का प्रवचन सुन लेते हैं, कोई साधु का, या कोई बहुत ही बड़ा पंडाल का कार्यक्रम चल रहा होता है कहीं भी, तो हमारे इस्कॉन के भक्त भी वहां कभी कभी चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि बस वो ऐसा बिल्कुल वही कह रहे थे जो हम लोग कहते हैं। वो भी भक्ति की बात करते हैं, हम लोग भी भक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब गहराई में देखा जाए तो वो सज्जन तो भक्ति की बात नहीं कर रहे, वो तो मायावादी हैं। कहने के लिए शुरुआत में ऐसी बातें करते हैं कि हाँ, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए आदि, परंतु निष्कर्ष यही है कि भगवान में के निराकार स्वरूप में लीन होना है। तो बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ये भी भक्ति की बात कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग वहां क्यों नहीं जाएं। तो ये इसलिए है कि हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है कि भक्ति क्या है। जैसे अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो जैसे मान लीजिए कोई यंत्र है, तो हमें अच्छी तरह से जानने की क्षमता होनी चाहिए कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है। अगर मेड इन जापान का स्टैंप लगा हुआ है लेकिन यहीं पे बना है कहीं छिटीकरा में, तो फिर हमें जानकारी होनी चाहिए पहचानने के लिए, नहीं तो हमें धोखा मिल जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा कि भक्ति क्या है, हम गलत रास्ते पे चले जा सकते हैं, पूरी संभावना है। क्योंकि भक्ति की सही परिभाषा वही दे सकते हैं जो प्रामाणिक संप्रदाय में आ रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय में आ रहे हैं। अन्यथा और जो कथा वगैरह करते हैं, अगर किसी प्रामाणिक संप्रदाय से वो जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और अगर जुड़े भी हुए हैं तो जब हमने एक संप्रदाय को पकड़ लिया है तो उसको छोड़कर इधर उधर क्यों जाएं भला। तो इसीलिए ये भक्ति की परिभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए, और न केवल भूमिका में लेकिन आगे चल के प्रभुपाद जी के भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय में भी भक्ति के लक्षणों का वर्णन आएगा, और आगे चल के सामान्य भक्ति का वर्णन और आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आइए अभी मंगलाचरण की चर्चा करते हैं। तो कोई इस कागज को फाड़ के यहां लगाएंगे, कोई पहले वाले कागज को, और पिन से जरा यहां पर लगा दीजिए इसको। तो मंगलाचरण जैसे हम बता रहे थे क्या है, जिससे मांगल्य का आह्वान होता है। किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले, कोई भी अच्छी बातें कहने से पहले, जैसे प्रवचन भी हम करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण कहते हैं ना, ओम अज्ञान अतिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया आदि हम श्लोक बोलते हैं, तो यह है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का उद्देश्य होता है कि मांगल्य का आह्वान करना, ताकि हम जो करने जा रहे हैं वो मंगलमय हो जाए, सबका भला हो जाए उसमें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि शय मंगलाचरण हो त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो मंगलाचरण क्या होता है इसकी परिभाषा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में दे रहे हैं कि मंगलाचरण के तीन उद्देश्य होते हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। पहला है वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश मतलब क्या है, मतलब उद्देश्य का स्पष्टीकरण। हम अभी क्या कहने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण, यह विज्ञान का लक्षण है। विज्ञान अगर कोई विषय है तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए बात, है ना। अगर हम किसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ठीक पता नहीं है कि विषय क्या चीज है, इसकी परिभाषा क्या नहीं जानते, आप कुछ कहते हैं हम कुछ कहते हैं और कोई कुछ कहता है, तो यह विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले किसी विषय का पाठ या अभ्यास शुरू करने के पहले हमें जानना चाहिए कि हम कौन से विषय को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए वस्तु निर्देश, उद्देश्य का स्पष्टीकरण। दूसरा है नमस्कार। नमस्कार मतलब हम प्रणाम करते हैं, नमः आकार, नमः मतलब हम प्रणाम करते हैं। हम साधारण तो हमारे दैनिक जीवन में नमस्कार नमस्ते कहते हैं, लेकिन बहुत गहरा शब्द है। कभी आपने सोचा है इसके बारे में, हम कहते हैं नमस्ते आप कैसे हैं, नमस्ते, नमस्ते मतलब क्या हम कह रहे हैं, केवल हाथ जोड़ने का अर्थ क्या होता है, ये नमस्ते शब्द क्या है आप बताएंगे, ये नमस्कार क्या है ये। हाँ, नमन करता हूं, नम धातु, नम मतलब प्रणाम करना, दंडवत करना। तो साधारण दैनिक भाषा में भी हम, ये कितना सम्मान का, सम्मान की संस्कृति है। ऐसे नहीं कि जैसे पाश्चात्य देशों की संस्कृति में हेलो हाउ डू यू डू और हाथ मिलाते हैं, ऐसे नहीं है संस्कृति। वैदिक सभ्यता जो है वो सम्मान पे, सम्मान के ऊपर स्थित है। दो लोग जब मिलते हैं आपस में नमस्कार करते हैं, आपको मैं आपको प्रणाम करता हूं, फिर बाद में जो आगे कहना है वो कहते हैं। तो नमस्कार, तो मंगलाचरण में नमस्कार जो किया जाता है वो या तो लेखक या वक्ता खुद अपना नमस्कार कर रहे हैं, पूर्वज आचार्यों को या भगवान को या वैष्णवों को, साधारणतः ऐसे देखा जाता है कि ये नमस्कार का उद्देश्य होता है। और तीसरी बात आशीर्वाद। कोई आशीर्वाद प्रदान करते हैं लेखक या वक्ता श्रोताओं के ऊपर या पढ़ने वालों के ऊपर, या तो फिर भगवान या किसी वैष्णव या महान संत के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी ग्रंथ के ऊपर या सारे समाज के ऊपर या सारे विश्व के ऊपर। तो आशीर्वाद का आह्वान करना किसी के भलाई के लिए या आशीर्वाद प्रदान करना, तो इन तीनों चीजें हम भक्ति रसामृत सिंधु के आह्वान में पाएंगे। वैसे प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु को का प्राय एक एक श्लोक से का अनुवाद किया है और उसकी ऊपर टीका की है। हम श्लोकों के साथ पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि एक एक लाइन जो है प्राय प्रभुपाद जी ने सही सही भक्ति रसामृत सिंधु से लिया है और बीच बीच में कभी कभी वो अपनी टीका लिखते हैं। तो यहां पर इस भूमिका में सबसे पहले मंगलाचरण है और मंगलाचरण के सबसे पहले है वस्तु निर्देश। तो ग्रंथ खुले हुए हैं ना आपके, तो पढ़िएगा भूमिका का सबसे पहला लाइन कौन सा है, दो शब्द पहले कौन से हैं, दो शब्द मंगलाचरणम। तो ये मंगलाचरण से कृष्णदास रूप गोस्वामी शुरू करते हैं और फिर ये श्लोक है। प्रभुपाद जी ने श्लोक नहीं लिखा है, श्लोक का अनुवाद लिखा है। तो आइए हम श्लोक को पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद जी ने यहां जो तात्पर्य लिखा है या जो अनुवाद किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके इस श्लोक का पहला लाइन आपने सुना है, ये कम से कम इतना सुना होगा, अखिल रसामृत मूर्ति ही, ये सुना है आपने पहले। ये कौन है अखिल रसामृत मूर्ति, कोई बताएंगे? ये किनको संबोधित करता है? कृष्ण को। कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति ही। प्रसृमर रुचि रुद्धा रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विदुर जयति। ये रूप गोस्वामी का मंगलाचरण है। एक ही श्लोक में वस्तु निर्देश करते हैं और सबसे ऊंचा वस्तु है, सबसे ऊंचा उद्देश्य है, कौन सा है ये उद्देश्य? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से और कोई ऊंचा उद्देश्य इस जगत में नहीं है, इसलिए पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, देखो मेरा उद्देश्य है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को ऊंचा और सबसे ऊंचा उद्देश्य मानते हो तो आओ ये ग्रंथ पढ़ो। तो भक्ति उन लोगों के लिए नहीं है जो इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, न वो कर्मियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, योगियों के लिए है, ये भक्तों के लिए है। इसलिए वस्तु निर्देश पहले ही कर चुके हैं श्री रूप गोस्वामी। अखिल रस और अमृत मूर्ति, इसके दो भाग किए जाते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति शब्द के दो भाग कौन से बताइए? अखिल रस और दूसरा अमृत मूर्ति ही, और इसका मतलब भी हम बताएंगे। आइए अब श्लोक का अंत देखिए, विधुर जयति। विधु, ये विधु किसका नाम है, कौन है विधु वो बताएंगे? अच्छा आप लिख लीजिए पहले, फिर बाद में, नहीं तो अब ध्यान से सुनेंगे नहीं फिर। विधु कृष्ण का नाम है। विधु शब्द के कई अर्थ होते हैं और हर दृष्टि से देखा जाए, किसी भी अर्थ को देखा जाए तो ये कृष्ण को ही संबोधित करते हैं, ऐसा श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं अपनी टीका में। तो विधु का एक मतलब है कि जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स नाम का चिन्ह है, ये एक मतलब है विधु शब्द का। दूसरा अर्थ है जो विधुनोति शब्द से आता है, जो अन्यों को पराजित करता है, हराता है, कृष्ण ही है जो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कौन है जो कृष्ण को पराजित कर सकता है? कोई नहीं। और एक अर्थ है कि जो दुख या क्लेश से परे हैं, और एक अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ है या अन्यों से बहुत आगे है वो, या और एक शब्द विदधाती से आता है, जो प्रदान करते हैं या जो उत्पन्न करते हैं दिव्य आनंद को, जो दिव्य आनंद को प्रदान करने वाले, या जो सर्व कारणों के कारण हैं, ये सारे अर्थ हैं विधु शब्द के। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं ये सारे अर्थ जो हैं वो केवल कृष्ण से ही संबंधित हैं। तो किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो विधु मतलब कृष्ण। तो ये सारे गुण हैं श्री कृष्ण के जो विधु शब्द में सम्मिलित हैं। तो विधु एक शब्द कहने से बहुत कुछ इसका मतलब होता है। जैसे कृष्ण कहने से हम कहना चाहते हैं जो सर्व आकर्षक हैं, उसी प्रकार से विधु कहने से ये सारे मतलब अर्थ आ जाते हैं उसमें। और जयति, जयति मतलब हाँ उनका जय जयकार हो, ये भी एक साधारण शब्द है। परंतु जयति का और एक भी अर्थ है जो अन्यों से श्रेष्ठ हैं। तो विधुर जयति का मतलब है कि जो अपने इन दिव्य गुणों के द्वारा, इन दिव्य गुणों की वजह से अन्यों से श्रेष्ठ हैं, वो श्री कृष्ण जो विधु हैं, सर्व कारण कारणम है, वो कृष्ण जो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, उनके दिव्य गुणों का सामना कोई नहीं कर सकता है। और ऐसा क्यों है? श्री कृष्ण के पास ऐसे गुण क्यों हैं? क्योंकि वो अमृत मूर्ति हैं, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप, अमृत मूर्ति, अमृत मूर्ति। हम सब क्या हैं? हमारे शरीर मृत मूर्ति है ना? ये शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होगा ना, आज नहीं तो कल। तो ये शरीर, ये हमारा स्वरूप जो इस समय है, जो हम आईने में देखेंगे, वो मृत मूर्ति है। लेकिन भगवान का स्वरूप है अमृत मूर्ति, जो कि दिव्य आनंद का स्वरूप है। और केवल आनंद नहीं, अखिल रस, सारे समस्त प्रकार के रसों के का भी मूर्तिमान स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। कल हम रस की परिभाषा कर चुके हैं, अब जानते हैं ना रस क्या है। तो जितने भी रस हैं, दिव्य रसों के समुद्र सागर हैं श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है, बताइए, रस से संबंधित, रस में रमण करने वाले श्री कृष्ण, रसराज, और रसिक शेखर, रसानंद, ऐसे कितने नाम है श्री कृष्ण के जो रस शब्द से संबंधित हैं। तो अखिल रस, समस्त रस हैं। कितने रस हैं बताइए? हाँ, किसी ने कुछ कहा अभी? 12 रस। लेकिन कल तो हम केवल 5 रसों की बात कर रहे थे। अच्छा, प्रमुख हैं 5, तो कौन से है बताइए? हाँ बताओ, परीक्षा शुरुआत से नीचे, सबसे नीचे से बताओ। हाँ, उससे भी नीचे, शांत, फिर दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो ये 5 प्रमुख रस हैं। 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं इन रसों के आधार पर, उनको रति कहते हैं, ये सब बाद में हम देखेंगे। तो इन रसों को और भी मधुर बनाने के लिए, इनका स्वाद बढ़ाने के लिए और 7 रस बताए जाते हैं, जिनको गौण रस कहते हैं। ये 5 मुख्य रस हैं, और अन्य 7 जो हैं, जो 5ों का स्वाद बढ़ाते हैं, वो गौण रस कहलाते हैं, सेकेंडरी रस। तो 5 मुख्य रसों के नाम तो आपने बता दिए, अब गौण रस के नाम बताइए, याद है? हास्य, विभत्स, विभत्स आखिरी है, पहले से शुरू कीजिए। हास्य, फिर करुणा, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स। तो हास्य मतलब क्या है? हंसी। वीर, वीर रस, जब कोई युद्ध करता है, युद्ध वीर रस, उसमें कभी कभी थोड़ा आनंद आता है ना, एक प्रकार का, या एक प्रकार का रस उसमें होता है, आनंद भी नहीं आता हो भले, लेकिन एक प्रकार का रस है, वो स्वाद है। और भयानक तो आप समझते हैं, रौद्र क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध, और क्या, करुण, वो भी समझते हैं, करुण, और विभत्स। विभत्स मतलब क्या है? वो अद्भुत है, आश्चर्यात्मक वस्तु, वो अद्भुत है। हाँ, घासली जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो बहुत ही भयानक से संबंधित है, परंतु जिसको देखकर हमें एक प्रकार की घृणा भी होने लगती है, घृणात्मक एक चीज, विभत्स। तो ऐसे सात रस हैं, ये गौण रस कहलाते हैं, और ये पांच रसों का कभी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और इन पांच रसों में का स्वाद जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये 12 रस हैं कुल, और ये 12 रसों के समुद्र सागर हैं श्री कृष्ण, इसलिए अखिल रस, और आनंद के स्वरूप हैं, इसलिए अमृत मूर्ति, इसलिए श्री कृष्ण का नाम हुआ, क्या हुआ, बोलिए जोर से, अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये श्री कृष्ण का एक नाम है। श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? 50, 100, 200, असंख्य, अनंत नाम है भगवान के, तो उनमें से एक नाम है, तो इसको अभी कभी भूलिएगा नहीं, अखिल रसामृत मूर्ति। ये भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे पहला लाइन है ये, अखिल रसामृत मूर्ति विधुर जयति। तो जय जयकार हो ऐसे अखिल रसामृत मूर्ति का, जिनके ऐसे दिव्य गुण हैं, जो विकसित हो रहे हैं, प्रसृमर मतलब जो विकसित हो रहा है, उनका सौंदर्य, उनके गुण जो है वो विकसित हो रहे हैं, रुचि, उनका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है, रुद्ध, रुद्ध मतलब जो वश में करता है, किनको वश में करता है, तारका पालही, पालही मतलब ये गोपी है जिसका नाम है पालिका, पालिका नाम आपने सुना होगा ना, और तारका, ये दो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं। अब इस श्लोक में तीन प्रकार के गोपियों का वर्णन करेंगे रूप गोस्वामी, पहले तो है तारका और पालिका। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने दिव्य सौंदर्य और गुणों से तारका पालिका आदि गोपियों को वश में करते हैं। रुद्ध, रुद्ध मतलब वश में करना। तारका जो है ये एक गोपी है, मुख्य गोपियों में से है, परंतु फिर भी अन्य मुख्य गोपियों के तुलना में इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है, हैं भले, लेकिन उतने ऊंची श्रेणी की नहीं मानी जाती है प्रमुख गोपियों में से। राधा रानी के पक्ष में है वो, और फिर है पालिका। पालिका ये गोपी है जो चंद्रावली के पक्ष में है। आप जानते हैं चंद्रावली का नाम सुना है आपने? कौन है चंद्रावली? हाँ, राधा रानी के विरुद्ध पक्ष में है। तो ये पालिका जो है ये चंद्रावली के पक्ष में है, और तारका पालिका आदि ये जो गोपियां हैं ये थोड़े निम्न श्रेणी में माने जाते हैं मुख्य गोपियों में से। हमारे दृष्टि से निम्न श्रेणी नहीं, ये हमें याद रखना चाहिए। ये राधा रानी के दृष्टि से, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कभी निम्न श्रेणी ऐसे इस दृष्टि से नहीं मानना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, कलित श्यामा ललितो, कलित मतलब स्वीकार करते हैं। किनको स्वीकार करते हैं, श्यामा, श्यामा मतलब श्यामला नाम की गोपी है और ललिता नाम की गोपी है। तो श्यामला ये भी राधा रानी के पक्ष में है और ललिता कौन है आप तो जानते हैं, प्रतिदिवस ललिता देवी का दर्शन करते हैं ना, राधा श्याम सुंदर के साथ में है। तो ये दूसरे श्रेणी में हो गए, कलित श्यामा ललिता। और तीसरे में कौन है, राधा प्रेयान, श्रीमती राधा रानी साक्षात हैं। तो राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। तो राधा रानी को प्रसन्न करते हैं श्री कृष्ण या प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन तीन वर्गों में से श्रेष्ठ वर्ग कौन सा है। एक तो है तारका पालिका, दूसरे है श्यामा ललिता और तीसरा है राधा रानी। राधा रानी क्यों, क्योंकि पहले दो वर्गों के हिसाब से श्री कृष्ण भोक्ता है। रुद्धा तारका पालिका ऐसे गोपी को वश में करते हैं। दूसरी बात कलित श्यामा ललितो की श्यामला ललिता को वो स्वीकार करते हैं, परंतु राधा रानी के साथ वो प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो वहां यहां वो भोक्ता नहीं है, इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी यहां इस मंगलाचरण के वस्तु निर्देश के अंत में स्वयं भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हो, ताकि जो भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से प्रेरित ये ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें कोई बाधा नहीं आए। हैं अवश्य, वो तो भक्त हैं, परंतु श्री कृष्ण का भाव कैसे है यहां कि वो राधा रानी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस दृष्टि से वो राधा रानी के वश में है, ये वृंदावन का भाव है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के वश में होते हैं, ये भाव है यहां इस श्लोक में। तो ऐसे श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। वस्तु निर्देश, ये वस्तु, ये उद्देश्य है हमारा, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो ये हुआ मंगलाचरण का वस्तु निर्देश। और आगे दूसरा भाग यहां देखिए, दूसरा भाग कौन सा है, नमस्कार। पहले गौर वंदना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी, लेकिन यहां श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रणाम करते हैं और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु को। तो ये एक प्रथा है सारे भक्तों में कि गुरुजनों को पहले प्रणाम करना चाहिए, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उनसे आशीर्वाद कृपा याचना करनी चाहिए, जिसके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों के लिए। भक्त वो है जो अपने पूर्वज भक्तों के ऊपर, अन्य वैष्णवों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। भक्त और स्वतंत्रता, ये दो चीजें साथ में नहीं जाती हैं। थोड़े दिन पहले हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम विदेश जाना चाहते हैं, हम थोड़े पैसे कमा लेना चाहते हैं। बोला क्यों, जब आप ब्रह्मचारी हो तो पैसे क्यों कमाने हैं। बोले हम मंदिर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। बोले यही तो हमारी मूल बीमारी है, इसलिए तो हम ये भौतिक जगत में आए हैं कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, हम स्वतंत्र होना चाहते थे। तो ये जो स्वतंत्र होने की इच्छा है, ये हमारा सबसे बड़ा रोग है, भव रोग, जिसकी वजह से हमें बारंबार यहां जन्म मृत्यु का चक्र, चिदि के चक्र में घूमना पड़ता है। लेकिन सत्य तो ये है कि हमारा स्वरूप है कि हम सदैव निर्भर हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं हैं। कृत्रिम रूप से अगर अपने आप को हम स्वतंत्र बनाने का प्रयास करेंगे तो इससे केवल दुख ही होगा और कुछ नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम भगवान कृष्ण और वैष्णवों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहकर अपनी सेवा भक्ति करें। इसलिए प्रभुपाद जी भी यहां ऐसे गुरु वंदना करते हैं और रूप गोस्वामी भी अपनी अपने मंगलाचरण में ऐसे ही गुरु वंदना करते हैं। फिर आगे रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी, जिनको कि वो गुरु तुल्य मानते थे, उनको प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो सनातन गोस्वामी को बहुत आनंद प्रदान करे। और वो कहते हैं कि भक्ति जो सनातन गोस्वामी हैं, वो सदैव इस भक्ति के रसामृत सिंधु में वो निवास करें और दिव्य आनंद प्राप्त करें राधा कृष्ण की सेवा में। तो अपने बड़े भाई और गुरु सनातन गोस्वामी को वो दिव्य आनंद प्रदान करना चाहते हैं, साथ साथ उनकी कृपा याचना भी करते हैं। तो ये हो गई गुरु वंदना। अब है वैष्णव वंदना। देखिए क्रम से हमें जाना चाहिए। थोड़े लोग होते हैं जो कहते हैं केवल हमें भगवान से मतलब है, हमें कोई गुरु से मतलब नहीं, हमें कोई भक्तों से मतलब नहीं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान को आप उनके भक्तों से अलग नहीं कर सकते, जैसे अब राजा को प्रजा से अलग नहीं कर सकते। अगर राजा को प्रजा से अलग कर दिया तो किस प्रकार का राजा है वो? अगर लखपति को अपने उसके लाखों रुपए से अलग कर दिया तो किस प्रकार का लखपति है? तो भगवान का ऐश्वर्य है उनके भक्त, तो भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भगवान को नमस्कार करके अब रूप गोस्वामी गुरुजनों को नमस्कार कर चुके हैं, अब समस्त वैष्णव समाज को नमस्कार कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर संस्कृति है ये, कि हम कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सबका आशीर्वाद लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और रूप गोस्वामी यह आगे सुंदर उदाहरण देते हैं। अभी आप पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा, कल आप पढ़ के आए ना सब भूमिका। तो जब वो मकर की चर्चा करते हैं तो मकर का उदाहरण कौन समझाएगा अभी क्लास में? जब अभी वो वैष्णव वंदना करते हैं रूप गोस्वामी, तो ये मकर का उदाहरण क्या है बताएंगे आप? फिर से बोलिए।
अमृत के महासागर में आचार्य गण मकर के समान
है। अच्छा, अमृत के सागर में आचार्य गण जो है वो मकर के समान है। ये मकर क्या चीज है? मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल, वो अलग होता है, वो मगरमच्छ। ये है मकर। मकर मकर कुंडल भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं ना, मकर कुंडल। मछली एक प्रकार की, लेकिन मछलियों के का राजा माना जाता है ये मकर। बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार का प्राणी है, ये जलचर है, इसको मकर कहते हैं। मछलियों का राजा है, साधारण मछली नहीं है ये। तो मकर वो कहां निवास करते हैं? मकरों को आप नदियों में प्राप्त नहीं करेंगे। कहां? सागर में, सागर की गहराई में, वो भी सागर के तट पे भी नहीं, वो सागर की गहराई में होंगे और वहां रमण करते हैं वो। अच्छा, और अच्छा कोई कृपया ये निकालेंगे कागज और इसको भी कहीं लगा दीजिएगा। यहां पर लगा दीजिए फिर, चाहिए तो इसमें। अच्छा, वैष्णव वंदना। तो इसमें जो तुलना की है रूप गोस्वामी ने यहां पर, उसको हमने थोड़ा भेद करके लिखा है। जल समुद्र जिसमें मकर तैरता है वो क्या है? यहां पे भक्ति रसामृत सिंधु, सिंधु मतलब सागर है ना, और दूसरी बात मकर महान वैष्णव हैं, और नदियां क्या हैं बताइए? निर्विशेषवादी लोग जो हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो केवल निराकार स्वरूप को जानते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है, यही परम सत्य है, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उनके कोई गुण नहीं है, केवल एक निराकार ज्योति है ये परम सत्य, ऐसा मानते हैं। और फिर आखिर में जो मछुआरे का जाल है, मछुआरा मतलब फिशरमैन का जाल है, उसको वो काल स्वरूप है। तो उदाहरण ये है, कृपया कोई पढ़िएगा इन तीन चीजों को जोर से, महान वैष्णव और मकर में समानता। अभी यहां उदाहरण दिया हुआ है रूप गोस्वामी ने, मकरों की तुलना वैष्णवों से की हुई है, सागर की तुलना भक्ति रसामृत सिंधु से की हुई है, निर्विशेषवादियों की तुलना नदियों से की हुई है, और मछुआरे के जाल की तुलना काल शक्ति से की गई है। तो अब देखिए, मकर और वैष्णव ये एक उपमा है ना, एनालॉजी। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं, किन तीन बातों में वैष्णव जो है वो मकर के समान है? कोई पहला पॉइंट पढ़िए। असीमित भक्ति रूपी सागर में आनंद से वैष्णव रूपी मकर तैरते हैं। जिस प्रकार से मकर जल समुद्र में गहराई में तैरते हैं, बड़े आनंद से रमण करते हैं, उसी प्रकार से भक्ति के गहराई में महान वैष्णव तैरते हैं, और किसी चीज की परवाह नहीं है उनको, बस अपने भक्ति से मतलब है। बहुत सुंदर उदाहरण है ना। और गहराई में जाते हैं, तट में नहीं, ऐसा नहीं कि उनका एक पैर यहां एक पैर यहां है, आज माला जप कर लिया फिर घर में जाके टीवी देख लिया, ऐसे नहीं है। कैसे है उनकी भक्ति? बहुत तीव्र है, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई रुचि नहीं है संसारी भोग में। तो ये तात्पर्य है कि वो सागर के भक्ति रूपी सागर के गहराई में गए हैं, तट में नहीं है। तो जैसे मकर तैरते हैं, वैसे वैष्णव जो हैं वो भक्ति रस का स्वाद लेते हैं इस समुद्र, भक्ति रूपी समुद्र के गहराई में। और दूसरा उदाहरण और कोई पढ़िएगा।
भक्ति सागर में रहने वाले वैष्णव मकर मुक्ति रूपी नदियों की परवाह नहीं करते हैं।
तो क्या मतलब है यह समझाइए आप। हाँ परीक्षित कहो। वो नदियों में नहीं जाना चाहते हैं, वो समुद्र में रहते हैं मकर, है ना, जल समुद्र में जो रहते हैं रहने वाले मकर होते हैं वो नदियों की परवाह नहीं करते, उन्हें तुच्छ समझते हैं, जाते भी नहीं है नदियों के पास, वो समुद्र के गहराई में रहते हैं। तो अभी वैष्णव से तुलना में बताओ अभी क्या है? हाँ बहुत अच्छा। जिस प्रकार से जो मकर समुद्र के गहराई में है और नदियों को तुच्छ मानता है, नदियों के पास भी नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से वैष्णव गण जो होते हैं वो मुक्ति को तुच्छ मानते हैं, इस निराकार की प्राप्ति को नहीं चाहते हैं वो। तो नदियों की तुलना मुक्ति से क्यों की गई है बताइए। हाँ, क्योंकि नदियां सागर में जाके मिलती हैं, और जो मुक्ति चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, ताकि हम सब भगवान हो जाएं, निर्विशेषवादी। ये बहुत ही खतरनाक दर्शन है ये। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चैतन्य चरितामृत में, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। जो इस तरह का भाषण सुनता है, प्रवचन सुनता है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है और वो सोचने लगता है कि अब मेरा जीवन का उद्देश्य इस निराकार ज्योति में लीन होना है और लीन होने के बाद क्या होगा, मैं भी भगवान हो जाऊंगा। तो इनकी यही धारणा रहती है कि हम भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे मुक्त होने के बाद, तो हमारा एकत्व हो जाएगा, यूनियन, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। जीव का अस्तित्व सनातन है। कोई श्लोक बताइए भगवद गीता का जो ये साबित करता है कि जीव का अस्तित्व, जीव का व्यक्तित्व सनातन है। हाँ बोलिए। जीव भूत सनातन, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब है इटर्नल, जो सदैव है। मम एव अंशः, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव जो है, जीव भूत, वो सनातन मेरा अंश है। ऐसा नहीं कहते कि थोड़े समय के लिए मेरा अंश है, कई जन्मों के लिए मेरा अंश है, बाद में मुझ में लीन हो जाएगा, फिर उसे ईश्वर स्वरूप प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कहते श्री कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि जीव जीव ही रहेगा, सनातन जीव रहेगा वो। तो प्रभुपाद जी एक जगह उदाहरण देते हैं ये समझाने के लिए कि हालांकि ये निराकारवादी लोग, निर्विशेषवादी लोग लीन होना चाहते हैं, लेकिन इनका लीन होना ऐसे है जैसे एक हरे रंग का तोता एक हरे रंग के वृक्ष में प्रवेश करता है। तो बाहर से देखने वालों को क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है कि तोता वृक्ष में लीन हो गया, ऐसे लगता है ना बाहर से। एक घना वृक्ष है समझिए, और हरे रंग का तोता उसमें प्रवेश करता है, तो बाहर से हमें लगता है कि हाँ ये वृक्ष में लीन हो गया, वृक्ष से एक हो गया। एक दृष्टि से ठीक है कि वृक्ष से एक हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस तोते की का व्यक्तित्व नष्ट हो गया। तोता अभी भी है, वो वृक्ष के अंदर है, किसी डाली के ऊपर, शाखा के ऊपर बैठा हुआ है वो तोता। तोता खत्म नहीं हुआ, न तोते का व्यक्तित्व खत्म हुआ है। तो जीव का व्यक्तित्व, जीव का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो ऐसा चाहते हैं वो इन नदियों के समान हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं, जैसे ये जीव वो निराकार में लीन होना चाहते हैं। तो मकर रूपी वैष्णव ऐसे मुक्ति के पथ का तिरस्कार करते हैं, वो तुच्छ समझते हैं इसको, हमें कुछ नहीं लेना देना इससे, क्योंकि लीन होने के पथ में भगवत सेवा नहीं होती है। भक्त तो केवल सेवा चाहता है भगवान की, और कुछ नहीं चाहता, वो मुक्ति नहीं चाहता। और अगर इस सेवा में कोई वस्तु बाधक है तो उस चीज को वो त्यागता है। तो ये दूसरी बात है। अच्छा तीसरी बात और कोई पढ़िएगा, तीसरी समानता।
सागर में रहने वाले मकरों को काल रूपी जाल का भय नहीं देता है।
तो इसको समझाइए जरा, तीसरे पॉइंट को, जो समानता है मकरों में और वैष्णवों में, एनालॉजी। हाँ मकर,
राजा होता है तो उसको किसी का भय नहीं, जो
आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस पॉइंट का व्याख्यान नहीं है वो। हमने उदाहरण ऊपर देखिए, मछुआरे का जाल क्या है, काल। अब बताइए, हमने आपको हिंट दिया है, अभी आप बताइए। हाँ बहुत अच्छा, मकर जो है वो तो समुद्र के गहराई में रहता है, तो वहां कौन सा मछुआरा जाएगा, कौन मछली पकड़ने जाएगा बीच समुद्र में, है ना। अगर मछली पकड़ने जाते भी हैं तो कहां जाते हैं, नदियों में जाते हैं या समुद्र के तट पर, थोड़ा सा अंदर समुद्र में गए वहां कुछ पकड़ लेते हैं मछलियों को, या तो नदियों में पकड़ते हैं, जाल फैलाते हैं अपने नौके में जाकर। लेकिन बीच समुद्र में रहने वाले मकरों के पास कौन मछुआरा जाएगा वहां, तो यह संभव नहीं है। तो ठीक उस प्रकार से जैसे कोई मछुआरे का जाल बीच समुद्र में जाकर मकर को फंसा नहीं सकता है, उसी प्रकार जो वैष्णव हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हैं गहराई में, उनको काल शक्ति का जाल फंसा नहीं सकता है। काल के प्रभाव में नहीं है, समय के प्रभाव में नहीं है वैष्णव, ठीक है। तो इसका क्या मतलब यह है कि वैष्णव कभी बूढ़ा नहीं होगा, वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होगी, वैष्णव के बाल कभी सफेद नहीं होंगे, ऐसा है इसका मतलब? फिर क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि वैष्णव जो शुद्ध भक्त होते हैं वो काल के चंगुल में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ सही है, लेकिन फिर भी क्या तात्पर्य क्या है इसका? मृत्यु का भय नहीं रहता, ठीक है, क्यों नहीं रहता? ठीक है, और बताइए काल शक्ति का कार्य क्या है, काल शक्ति करती क्या है बताइए? भयभीत करके फिर आखिर में क्या करती है?
सब कुछ हरण कर लेती
है। सब कुछ हरण करने का मतलब क्या है? मतलब मृत्यु। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए जन्म निश्चित है। तो काल शक्ति का कार्य यह है कि जीवों को बारंबार पहले तो जन्म देता दिलाता है और बाद में मार डालते हैं। चलो जन्म दिला दो फिर मार डालो, फिर से जन्म दिला दो फिर से मार डालो, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाना, अटका देना जीवों को, यह काल शक्ति का कार्य है। इसलिए इसको भव कहते हैं, भव। हम लोग अभी भक्ति रसामृत सिंधु की बात कर रहे हैं ना, और हमारा सिंधु, जिस सिंधु से हम परिचित हैं वो क्या है, हमारा जीवन क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, भव सिंधु। वो भक्ति रसामृत सिंधु कहां और ये भव सिंधु कहां? तो भव सिंधु की पहचान क्या है? भव, भव मतलब क्या? भवती, हो जाना। क्या हो जाना? बूढ़ा हो जाना, बीमार हो जाना, मर जाना, फिर जन्म लेना, ये है भव। तो भव सिंधु वो है, वो स्थान है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये चार चीजें हमेशा होती हैं। तो ये है काल शक्ति का प्रभाव। काल शक्ति जीवों के ऊपर काम करके ये चार परिवर्तन कराता है जीवों के लिए, ठीक है। लेकिन वैष्णव के ऊपर काल का क्या परिणाम है? मृत्यु के बाद क्या होगा वैष्णव का? भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक में जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होगा ऐसे वैष्णव को। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है, आयुर हरति वै पुंसान उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये श्लोक किसी ने सुना है? अच्छा, इसकी व्याख्या कीजिए।
सूर्य उन लोगों की आयु को हर लेता है जो भौतिक कार्यकलापों में अपना जीवन करते हैं।
सूर्य उन लोगों के आयु को हर लेता है जो भौतिक कार्यकलापों में लगे हैं। किस प्रकार से? उद्यन अस्तम चयन असो, मतलब हर दिन जब सूरज उदित होता है और अस्त होता है, ऐसे उदित होना अस्त होने से वो व्यक्ति जो भौतिक कार्यकलापों में लगा है वो मृत्यु के एक दिन करीब पहुंच गया है, है ना। बस यही तात्पर्य है कमेंट्री। अच्छा और आगे बताइए। लेकिन भक्तों के लिए क्या होता है? उद्यम अस्तम चयनसो तस्यर्थ यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। हाँ उत्तम श्लोक कौन है? भगवान कृष्ण। वार्तया मतलब वार्ता, टॉपिक्स, विषय। यत् क्षणो नीर्त, एक क्षण के लिए भी अगर कोई ऐसे थोड़े समय के लिए भी कोई भगवान कृष्ण की कथा करता है, कुछ सुनता है, भगवान का भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उस हद तक वो काल की चंगुल से मुक्त हो जाता है। बल्कि वैष्णव के लिए मृत्यु कोई परेशानी की बात नहीं है, भय की बात नहीं है। मृत्यु भक्त के लिए भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसके लिए मृत्यु क्या है? एक दूसरे जन्म के लिए द्वार है। दूसरा जन्म कहीं भी हो सकता है, उसके कर्मों के अनुसार उसे जन्म मिलेगा, चाहे पक्षी का हो, कीड़े का हो, पशु का हो, मनुष्य का हो, देवता का हो, तो कोई भी जन्म ले ले, लेकिन उसे जन्म मिलना है, ये निश्चित है। तो दोनों मृत्यु में अंतर है। हालांकि ऐसे प्रतीत होता है कि वैष्णव मर रहे हैं और भौतिक लोग भी मर रहे हैं, तो दोनों की मृत्यु में अंतर क्या है? एक बार प्रभुपाद जी को एक पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए, आप कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं लेकिन किसे पता कृष्ण है या नहीं है, और आप इतना समय कृष्ण के लिए बिता रहे हैं और मृत्यु के बाद अगर आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कोई समस्या नहीं। देखिए हम लोग जब जी रहे हैं ना, हम चार नियमों का पालन करते हैं, महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, स्वादिष्ट प्रसाद का सेवन करते हैं, भक्तों के संग में खूब नाचते कूदते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अच्छी कथाएं सुनते हैं, तो आनंद से हमारा जीवन तो कम से कम बीत जाता है। और मृत्यु के बाद फिर नहीं भी है कृष्ण तो कोई समस्या नहीं, क्या नुकसान हुआ हमारा? लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ करिए। अगर मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है तो आप क्या करोगे? है ना, करेक्ट, सही है ना, क्योंकि उसको फिर भगवान का रूप कैसे दिखेगा? मृत्यु के रूप में भगवान दिखेंगे। लेकिन भक्त के लिए क्या होता है? भक्त सीधे भगवान के धाम में जाने वाला है, वन वे टिकट उसको मिला हुआ है, तो इसलिए वो तो सुखी है अपने जगह में, उसको कोई परवाह नहीं है। तो ये काल, ये मछुआरे का जाल है जो मकर को नहीं पकड़ता, उसी प्रकार से काल शक्ति, काल का जो जाल है, इसमें वैष्णव कभी फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शाश्वत जीवन के अधिकारी हैं, वैकुंठ जगत के अधिकारी हैं। उनको वीजा मिल गया है, पासपोर्ट वीजा सब तैयार उनका है, केवल समय की बात है अभी। ठीक है, तो ये है वैष्णव वंदना। तो अभी इस उदाहरण को आप अच्छी तरह से जान गए, तीन पॉइंट को, ठीक है, मकर और वैष्णवों के की तुलना जो है। हाँ ये भी आने वाला श्लोक है, अभी तक यहां पहुंचे नहीं है हम। तो अभी जो नमस्कार है वो भी जारी है अभी। और अभी पांच और छह ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक, इसमें भी आशीर्वाद शुरू हो गया है। अब तक तो नमस्कार हो गया, गौर वंदना, गुरु वंदना, और तीसरा क्या है? वैष्णव वंदना, ठीक है ना। तो अभी अब हम आए हैं आशीर्वाद। अब रूप गोस्वामी थोड़े चिंतित हैं। किस बारे में चिंतित हैं बताइए? आपने पढ़ा होगा कल भूमिका, किस बारे में चिंतित हैं आप बताइए?
जो जो गर्भजीत
किस दृष्टि से सुरक्षित रहना चाहिए, मतलब क्या है, इस ग्रंथ को लेंगे, फाड़ देंगे, क्या करें, किस दृष्टि से इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं रूप गोस्वामी? तार्किक लोगों से, तार्किक मतलब समझे ना, तर्क करने वाले, जो केवल वाद विवाद करते हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, अपने मन घड़ित ढंग से जो तर्क करते हैं उनको तार्किक करते हैं, तार्किक कहते हैं। तो तार्किक लोगों से, मीमांसक जो कर्मी और ज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों से इस ग्रंथ की रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा करना मतलब क्या? हाँ बिल्कुल, गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, और गलत अर्थ निकालें भी तो इसका कोई परिणाम नहीं होना चाहिए समाज के ऊपर, लोगों को गलत रास्ते में ये लोग नहीं ले जाने चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो तार्किक लोगों के वचन होते हैं, उनकी वाणी जो होती है वो ज्वालामुखी के समान है, ज्वालामुखी जो कि समुद्र के भीतर कभी होता है, समुद्र के नीचे बिल्कुल, तो उसमें समुद्र को कितना फर्क पड़ता है। आग बुझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? जल। और जब आग समुद्र के नीचे होता है तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है? जितना ज्यादा जल आप लगाएंगे उतनी आसानी से वो अग्नि बुझ जाएगा। तो जब इतना विशाल समुद्र है और इस समुद्र के नीचे से एक ज्वालामुखी वॉल्केनो हो रहा है, तो इससे समुद्र को क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना जल है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये सिंधु है, बहुत विशाल है, और उस बीच में ये तार्किक लोगों की जो गलत अर्थ निकालना है ना, मनोधर्म, ये क्या है, उन ज्वालामुखियों के बराबर है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि सदैव ऐसे तार्किक लोगों के दार्शनिक चिंतन, झूठे दार्शनिक चिंतन से इस ग्रंथ की रक्षा हो, और भक्ति रसामृत सिंधु को यह शक्ति मिले कि ऐसे ज्वालामुखी को वो न केवल रोके लेकिन इसको नष्ट भी करे, और ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी की बात समझ गया, इसके बारे में कोई प्रश्न है? वास्तव में रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वड़बा अग्नि शब्द इस्तेमाल करते हैं, वड़बा अग्नि ही। वड़बा एक ऐसी अग्नि है जो पृथ्वी के दक्षिण कोने में है, साउथ पोल में। ऐसे बताया जाता है कि औरवा नाम के एक व्यक्ति थे जो भार्गव थे, भृगुवंशी थे, और एक बार उनको जब वो कार्तवीर के पुत्र उनकी हत्या करने वाले थे तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अग्नि उत्पन्न कर ली जो कि सब कुछ नष्ट करने वाला था। फिर अन्य जो भार्गव थे वो आकर कहने लगे और वैसे कि ये शोभा नहीं देता, तुम भी भार्गव हो, तो उन्होंने कहा क्या करूं, अग्नि तो आ गई है। फिर उन्होंने घोड़ी के रूप में, इसको वड़बा कहते हैं संस्कृत में, उसको पृथ्वी के दक्षिण कोने में लगा दिया, इसलिए साउथ पोल में अभी वो ज्वालामुखी अभी तक है, आती है, लेकिन वहां इतना जल है, बर्फ है, तो वहां क्या फर्क पड़ेगा। तो ये उपमा है जो रूप गोस्वामी देते हैं, और आगे फिर अपने आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, और वो कहते हैं कि अभी मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे मनुष्य समाज के लिए कुछ भला हो, और विशेष करके वो कहते हैं कि मैंने सारे जीवों के लिए, विशेष करके मनुष्यों के आनंद के लिए, सुहृदम प्रमोदाय, उनके लिए ये ग्रंथ की रचना की है, तो उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो। तो ये आशीर्वाद है। पहले तो रूप गोस्वामी आशीर्वाद की याचना कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा के लिए, अभी वो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, किनके ऊपर? सारे वैष्णवों के ऊपर, कि आपको भी इस भक्ति पथ में, आपको भी इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़ के बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त हो, ऐसे रूप गोस्वामी का आशीर्वाद है। तो इस आशीर्वाद को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और साथ साथ इस बात में एक महत्वपूर्ण बात रूप गोस्वामी कहते हैं, पढ़िए जरा, बताइए कौन सा पॉइंट है वो। हाँ हाँ जी, क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन प्रचार करते हुए अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझना चाहिए इस कार्य के लिए, कि मैं प्रचार तो कर रहा हूं परंतु मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे कोई गुण नहीं है इस कार्य के लिए, परंतु केवल पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से मैं दो शब्द कुछ बोल पा रहा हूं, कुछ प्रचार कर पा रहा हूं। और इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं बताइए?
कृष्णा भाव में गंभीर समस्त प्रचारकों को श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुभव करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अभी तो यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र है, उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं।
बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी हम सबको अभी एक उपदेश दे रहे हैं कि ये नहीं समझना कि तुम बहुत बड़े प्रचारक हो, नहीं, प्रचारक हमेशा समझता है कि मैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है और जो भी कुछ मैं कर रहा हूं मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं पूर्ववर्ती आचार्यों का। तो इसी भावना से अगर हम महान वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों में चलेंगे तो फिर हम सारे समाज के कल्याण के लिए वास्तव में कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो यह है आशीर्वाद। तो इसके साथ मंगलाचरण समाप्त। तो अभी ग्रंथ विभाग, दूसरा भूमिका का दूसरा भाग कौन सा है? ग्रंथ विभाग। तो इसको जरा घुमाएंगे आप। तो अभी तक स्पष्ट है, किसी को कोई संदेह है, कोई संशय? हाँ घुमा लीजिए पीछे। तो सिंधु के भाग होते हैं ना, पूर्व भाग, पश्चिम भाग, उत्तर भाग, दक्षिण भाग। तो उसी प्रकार से ये भक्ति रसामृत सिंधु के भी भाग हैं, चार भाग, पूर्व भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग और उत्तर भाग। तो इस ग्रंथ का विभाजन हुआ है इस प्रकार से, और पहला जो विभाग है उसमें भगवत भक्ति भेद, इस विषय की चर्चा हुई है। दूसरे में, दूसरे विभाग में सामान्य भगवत भक्ति रस की चर्चा हुई है। तीसरे में और चौथे में क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे, जब आप भक्ति शास्त्री कर लेंगे, फिर भक्ति वैभव सार्वभौम आप करेंगे आगे, तो उस समय ये सब आएगा। तो अब आपके भक्ति शास्त्री के लिए केवल पूर्व विभाग है बस, जो आमुख, भूमिका और पहले 19 अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु के। और अभी तक हम भूमिका पे हैं, पहला अध्याय भी शुरू नहीं किया है। तो जैसे एक समुद्र में लहरें होती हैं, उसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में भी लहरें हैं। तो पूर्व विभाग के चार लहरें हैं। प्रथम लहर में सामान्य भक्ति का वर्णन है, दूसरे लहर में साधन भक्ति का, तीसरे लहर में भाव भक्ति का और चौथे लहर में प्रेम और भक्ति का। इस प्रकार से ग्रंथ का विभाजन हुआ है। यह केवल एक जानकारी के लिए, ताकि आप समझें, जैसे जैसे आप इस ग्रंथ को पढ़ते जाएंगे आपको पता होना चाहिए पहले से कि कौन से विषयों के बारे में चर्चा यहां हो रही है और होने वाला है। ठीक है, और आगे तीसरा भाग उत्तम भक्ति की परिभाषा, इसको बदल दें आप लिखना चाहते हैं अभी भी, ठीक है लिख लीजिए, आप में से जो लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। वैसे आप जब 2 घंटे का क्लास होता है तो 1 घंटे के बाद थोड़ा विराम होता है, थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसे कुछ होता है। तो ठीक है, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो इस ब्रेक में आप लिख लीजिए, फिर थोड़ा 5 मिनट आराम करके फिर से हम मिलेंगे। और 6 बजे तक क्लास है ना आज, कितने बजे तक? वो 5:30 है, आज 3:30 को शुरू किया है। अच्छा, तो थोड़ा जल्दी जाना होगा अभी। ठीक है, तो फिर ब्रेक नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, इसको बाद में आप लिख लीजिएगा। ओके, इसको आप फाड़ के जो है यहां पे कहीं लगा दीजिए, जहां अगर कोई जगह हो, यह नहीं है तो इसके ऊपर लगा दीजिए फिर, क्योंकि ये तो अभी तीसरे भाग पर हम पहुंच गए, उत्तम भक्ति की परिभाषा। तो इस विषय के बाद भूमिका समाप्त हो जाएगा। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा आरंभ करने वाले हैं, और ये श्लोक जो अभी आप देख रहे हैं ये भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्ति रसामृत सिंधु में कई श्लोक हैं, इतना मोटा किताब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक ये है। आपने सुना है? आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को सुना है पहले? हाथ ऊपर कीजिए। आप में से कितने भक्तों को कंठस्थ है ये? दो या तीन, चार, ठीक है। अभी आज के बाद जब यहां से हम जाएंगे तो सभी को कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। हर एक ग्रंथ का एक सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र, जिस सूत्र को जानकर हम ये जान पाएंगे कि ये ग्रंथ क्या चीज है। ये ग्रंथ का आधार होता है परिभाषा सूत्र। तो भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है ये श्लोक। तो आइए हम साथ मिलकर, अभी मैं बोलूंगा फिर आप पीछे बोलिएगा, इस श्लोक को हम 3-4 बार बोलेंगे। हम मैं 3 बार बोलूंगा, जैसे हम रोज भागवत क्लास में करते हैं वैसे, बार बार उच्चारण करने से जो है हमें कंठस्थ होता है। तो आपके लिए गृह पाठ है ये श्लोक, अवश्य आप कंठस्थ कीजिए। एक कागज के ऊपर लिखकर जो है, कार्ड के ऊपर लिखिए, और घर में आप जहां चल रहे होते हैं तो उसको आप कंठस्थ करते जाइएगा। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अब बोलिए।
अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु माता जी। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। और कोई? अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। परिभाषा या अनुवाद कोई पढ़िए।
उत्तमा भक्ति या परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य मंतव्य से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थ में इच्छाओं से रहित होना चाहिए।
बहुत अच्छा। तो ये है हमारा उद्देश्य। ऐसे भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। केवल यूं ही हम कहेंगे हमें भक्ति चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण भक्ति का यहां पर हुआ है। और ये श्लोक का हर एक शब्द हम जानेंगे, अभी इसका विश्लेषण करेंगे हर एक शब्द का, और ये देखेंगे कि रूप गोस्वामी पाद कितने बुद्धिमान हैं, कि उन्होंने कितनी सुंदरता से परिभाषा की है कि हर एक शब्द का महत्व है, हर एक अक्षर का महत्व है, केवल शब्द नहीं अक्षर भी। और ये हम आगे चल के देखेंगे क्यों ऐसा है, केवल अक्षर का भी कैसे महत्व है। और उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि यहां इस परिभाषा से कोई गलत अर्थ उठाएगा इसका, ये संभव नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने परिभाषा की है। तो आइए अभी हम इसकी इसका विश्लेषण करते हैं। तो इसको कृपया आप कोई निकालेंगे बाहर और इसको यहां पर लगाइएगा, पीछे वहां लगा दीजिए, जोड़ दीजिए वहां पर। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के दो प्रकार के चिन्ह या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण, जो मुख्य लक्षण है, और दूसरे को कहते हैं गौण लक्षण, या तटस्थ लक्षण। तो उसी प्रकार से भक्ति, भक्ति की जो परिभाषा है तो भक्ति के तीन स्वरूप लक्षण हैं और दो तटस्थ लक्षण हैं। तटस्थ लक्षण क्या हैं? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन इस समय हम देखने जा रहे हैं कि भक्ति के प्रमुख लक्षण, मुख्य लक्षण, स्वरूप लक्षण क्या है। अनुशीलनम कृष्ण और अनुकूल्येन, तो ये श्लोक यहीं पर पास में है तो आप देख सकते हैं, ये श्लोक के दूसरे आधे भाग में है, ठीक है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, तो ये उत्तमा भक्ति का वर्णन है, साधारण भक्ति का नहीं, शुद्ध भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, केवला भक्ति। तो ऐसा कीजिए मेरे ख्याल से कि आप केवल अभी देखिए यहां पर, और क्लास के बाद में आप 10 मिनट बैठ के इनको आप लिख लीजिए। जो चार्ट में नहीं है अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, ताकि हम जो बोल रहे हैं फिर आप अच्छी तरह से उसको सुन पाएंगे, नहीं तो आपका ध्यान लिखने में जाएगा और जो बोला जा रहा है फिर उसको आप सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो अनुशीलनम, तो प्रभुपाद यहां शुरू करते हैं इस परिभाषा से, और वो कहते हैं कि भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब क्या है? कल्टीवेशन। जैसे पौधे को हम जो बीज बोते हैं जमीन में, फिर पौधा आता है, फिर आगे क्या करना पड़ता है? बहुत देखभाल करना पड़ता है ना, पानी सिंचाई करनी पड़ती है, फिर साथ साथ ये देखना पड़ता है कि कोई पशु वगैरह आके, जानवर आके उसे खाना डालें, उसे देखना चाहिए कि रोशनी मिल रही है या नहीं, उष्णता मिल रही है या नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है, खत भी देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भक्ति जो है ये क्रियाशील कार्य है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भक्ति निष्क्रिय चीज है। कई बार लोग आके टीका करते हैं कि हम लोग कर्मयोगी हैं। एक बार एक राजनेता थे जो हम जिनको मिलने गए थे एक बार, वो कहने के आप लोग भक्ति करते हैं लेकिन हम लोग कर्मयोगी हैं। तो साधारण तो लोग जानते नहीं कि कर्मयोगी मतलब क्या है। वो सोचते हैं कि जो, क्षमा कीजिए, गधे की तरह परिश्रम करता है वो कर्मयोगी है। ज्यादा जितना जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो सोचेगा ये कर्मयोगी है। केवल मेहनत करना ये कर्मयोगी के लक्षण नहीं है। मेहनत तो सभी करते हैं दुनिया में, पशु भी करते हैं, पशु तो कर्मयोगी नहीं कहलाते। तो कर्मयोगी वो है जो फलों से निरासक्त है। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, ये फलों से निरासक्त है। वो कर्म करता है लेकिन सबसे पहली पहचान है कि फलों से निरासक्त है। तो लोग जानते नहीं है और भक्ति के बारे में भी गलत धारणा रखते हैं। आप लोग तो केवल हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं। तो हमने पूछा, मतलब आप क्या सोचते हो कि हम क्या कोई पेड़ के नीचे बैठ के हमारे 24 घंटे ऐसे ही बस हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं? अगर ऐसे कर भी सकते तो बहुत अच्छा होता। अगर 24 घंटे कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकता है तो और क्या चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में। परंतु हम देखते हैं कि षड गोस्वामी भी बहुत ही क्रियाशील थे, बहुत ही एक्टिव थे, बल्कि उन इतने कार्य क्रियाशील वो कार्य करते थे, दिन भर इतने व्यस्त रहते थे कि कभी कभी सोना भूल जाते थे, खाना भूल जाते थे। सत्य है ये। कभी आपने ऐसे सुना है कि कोई व्यक्ति सोना भूल गया? नींद आना, कभी नींद तो आती है तो आती है, लेकिन षड गोस्वामी भक्ति में इतने मग्न रहते थे कभी भूल जाते थे सोने के लिए। अरे आज तो 2 दिन बीत गए हम सोए नहीं, अच्छा चलो अभी 1 घंटा सो लेते हैं। ये दशा थी षड गोस्वामियों की। इतने एक्टिव थे, इतने क्रियाशील थे वो। क्या करते थे वो? ग्रंथों की रचना करते थे, आपस में परस्पर में बैठ के जो है इन ग्रंथों के बारे में चर्चा करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, प्रचार करते थे, कीर्तन करते थे, विग्रह की सेवा करते थे, मंदिर मार्जन आदि करते थे, बहुत सारे कार्य हैं भक्ति में। और प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था में अभी हमें कार्य बताए हैं वो भी कितने सारे हैं, कोई कमी नहीं है। किसी भी इस्कॉन क्षेत्र में केंद्र में जाके देखिए कितने कार्य हैं करने के लिए, कोई कमी नहीं है। तो इतनी सेवा है भक्त के लिए, चाहे कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति क्रियाशीलता है, एक्टिविटी, निष्क्रियता नहीं है ये। हाँ, अगर लक्ष्य न ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे तो ये तो बुद्धि का लक्षण नहीं है। जब कार्य करते हैं तो कोई तो लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हाँ, परंतु फल या जो लक्ष्य का स्पष्टीकरण होना ये एक है, और फल से आसक्त होना वो दूसरी बात है। हम भौतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अभी सोच लीजिए, एक व्यापारी है, वो अपना व्यवसाय करता है और उसका लक्ष्य है क्या है, महीने के अंत में कम से कम इतना मुनाफा होना चाहिए। और वो देखता है कि मेरे ग्राहकों को मैं अच्छी तरह से देखभाल करूं, ठीक ठाक सब करूं तो मुनाफा आ जाएगा, उसका लक्ष्य है। अगर उसको मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेगा व्यवसाय? तो लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन इस लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा या नहीं वो उसके हाथ में नहीं है। वो प्रयास कर सकता है, वो इस भ्रम में भी पड़ सकता है कि मेरे परिश्रम की वजह से ज्यादा मुनाफा हुआ या उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, ये भ्रम है। सत्य तो ये है कि सफलता या नुकसान ये भगवान के हाथ में है, और ये हमारे भाग्य, हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे चल के कि प्रारब्ध क्या है। तो फल मिले या न मिले ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है जो भगवान के नियंत्रण में है। लेकिन लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है निरासक्त होकर। परंतु गलती कहां करते हैं लोग? आसक्त हो जाने के पहले। लक्ष्य, सही लक्ष्य ठीक में जानते नहीं है कि सही लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, पहले ही मार खा जाते हैं। लक्ष्य ही ठीक नहीं है, उद्देश्य ही ठीक नहीं है तो फिर क्या फायदा? हम पहुंचना एक जगह चाहते हैं, दूसरी चीज को लक्ष्य बना लिया है तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। वो कहते हैं कि लोग ज्यादातर अपने स्वार्थ को, अपने हित को, अपने लक्ष्य को जानते नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें किस लिए जीना चाहिए, नहीं जानते हैं लोग। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं बहिर्थ मानिनः, कि ये दुनिया की जो वस्तुएं हैं ये इतने आकर्षक हैं, इतने मूल्यवान हैं और ये प्राप्त करने योग्य हैं, तो अगर इन दुनिया की चीजों को मैं प्राप्त करूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी दो चार गाड़ियां हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बड़ा नाम हो जाए समाज में, या मुझे बहुत बड़ा अच्छा सुंदर शरीर मिले, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बन जाऊं, मुझे पुरस्कार मिले। तो दुनिया के भीतर रहते हुए दुनिया के प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा आदि प्राप्त करने की जो इच्छा है, प्रहलाद इनको दुराशा कहते हैं, सुआशा नहीं, दुराशा, बैड डिजायर्स। क्यों? क्योंकि ये दुराशा जो है ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र में अटका के रखते हैं। तो जब व्यक्ति अपना सही लक्ष्य अपना सही हित नहीं जानता है, अज्ञान है, अज्ञान की वजह से वो ये निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकता कि मेरा लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, मेरा हित किस में है, अपने हित को गलत समझता है और उस दिशा में अपना लक्ष्य बना लेता है। जैसे समझ लीजिए कि एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर वहां आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और नीचे वहां बिल्कुल खड्डा है, वहां बहुत गहरा खड्डा है और व्यक्ति जानता नहीं है और सोचता है कि मेरा लक्ष्य सीधा जाना है, मैं सीधा जाऊंगा। अगर वो जानेगा नहीं कि आगे क्या है तो फिर गिरेगा। तो यही बात प्रहलाद कहते हैं, अंधा यथांधे उपनीयमाना तेपी शतंत्र्याम उरुदाम्नि बद्धा है। तो सभी लोग अपना अपना लक्ष्य बना रहे हैं लेकिन उनका लक्ष्य दुनिया के भीतर ही है। किसी को मंत्री बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है। तो सभी लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य दुनिया के संसार के भीतर बना लिया है, ये समस्या है। तो सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, प्रहलाद कहते हैं अंधा यथा अंधेर। और जो नेता है वो भी अंधे हैं, जो प्रजा है वो भी अंधे हैं। जब एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी के हाथ पकड़ के ले जाता है तो क्या होगा, खड्डे में गिर जाएंगे। यूरोप में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका नाम भूल गया मैं, उन्होंने एक पेंटिंग किया था प्रसिद्ध चित्र ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। उसमें वो दिखाते थे कि एक आदमी है अंधा है, वो दूसरे आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है, वो भी बेचारा अंधा है, वो दूसरे आदमी ने तीसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे कई अंधे लोग हैं लेकिन इनका जो लीडर है वो अंधा है और सामने बड़ा खड्डा है, ऐसे चित्र में दिखाया हुआ है। तो क्या होगा, ये सारे लोग खड्डे में चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल जो अनेक क्षेत्रों के जो नेता हैं वो सब आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, हित किस में है, और वो कोई अपने मार्ग बनाते हैं और प्रजा भी उनके पीछे पीछे चलती है और फिर सारे लोग नरक की ओर जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लोग अपना लक्ष्य ठीक नहीं बनाते, और अगर दुनिया के भीतर भी कोई लक्ष्य बनाए तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए हमें कोई लक्ष्य रखने चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बीमार नहीं हो ताकि हम ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से करें, यह भी एक लक्ष्य है, यह भी संसार के भीतर का लक्ष्य है, लेकिन फिर भी हमें निरासक्त होना चाहिए, सारी सावधानी तो लेनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि आखिर भगवान को कुछ ऐसी बीमारी हमें देनी है तो वो देंगे, हमें सावधान रहना है, परंतु इससे आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान जो चाहे फिर वो करेंगे। तो लोग सोचते हैं कि कर्म योग का मतलब है कि केवल परिश्रम करते रहो, दिन भर सुबह ऑफिस में जाओ 6 बजे, रात को 10 बजे ऑफिस से आ जाओ, ये लोग बाहर सोचते हैं, और खूब पैसे कमाओ यही है ना लोगों की धारणा, तो ये गलत है। इसलिए रूप गोस्वामी यहां स्पष्ट बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए पहले ही मंगलाचरण में वस्तु निर्देश हो गया था, उद्देश्य का स्पष्टीकरण हो गया था, और यहां पे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति जो है ये बहुत क्रियाशील है, कि यहां भक्त को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और अनुशीलन, ये दो शब्द हैं, अनु और शील। आप जानते हैं कि संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनके धातु होते हैं, क्रियापद, क्रियापद के धातु होते हैं, वर्ब्स, वर्बल रूप्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये अनुशीलन जो शब्द है इसके दो भाग हैं, अनु और शील। शील ये धातु है, तो इसका क्या अर्थ है नीचे बतलाए वो देखिए। शील का मतलब है अभ्यास करना या प्रैक्टिस करना, सेवा करना, भजन करना, ध्यान करना, ये सब क्रियायुक्त हैं कार्य। ध्यान भी करना ये भी एक क्रियायुक्त कार्य है ना, क्योंकि ध्यान करने से हमारा मन बहुत तेज एक जगह पर केंद्रित रहता है, तो ये मन का कार्य है। और अनु शब्द का अर्थ है निरंतर कुछ करना, या भक्ति भाव से कुछ करना, बार बार करना, या किसी के पीछे पीछे जाना, यह है अनुशीलन। तो शील, क्योंकि इसका मतलब है कुछ करना, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति क्रियाशील रहता है और बारंबार ऐसे वो कार्य करते रहता है तो इसको अनुशीलनम कहते हैं। लेकिन अनुशब्द का तात्पर्य क्या है? अनुशब्द का तात्पर्य है कि किसके पीछे जाएं हम, किनके पद चिन्हों में चलें? पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों में। यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं कि मनगणित ढंग से हमें कोई पथ चुनना है और उस प्रकार से हमें कार्य करने हैं, नहीं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि कार्य एक्टिविटी तीन प्रकार से होती है, हमारे मन से, हमारे शरीर से और हमारे वाणी से। ये बात करना ये भी एक कार्य है, सोचना ये भी एक कार्य है, और अपनी स्थूल इंद्रियों से कार्य करना यह भी कार्य है। तो इन तीनों से हम कार्य कर सकते हैं। और एक विभाजन है कार्यों का, प्रवृत्ति और निवृत्ति। और प्रभुपाद जी यहां उदाहरण देते हैं एक मरीज का। मरीज का क्या उदाहरण है कोई बताएंगे? इस संदर्भ में प्रभुपाद जी यहां रोगी का क्या उदाहरण देते हैं?
मरीज दवा है, तो वो भी
है,
वो
क्या है?
और
प्रवृत्ति क्या है? निवृत्ति हुई। ये बात
प्रवृत्ति वो है क्योंकि वो जब ईश्वर जब कृष्ण की को सोच करके वो कोई कार्य करता
नहीं। अभी इस मरीज के उदाहरण में प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? इस मरीज के उदाहरण में एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर परीक्षा करता है और कोई निष्कर्ष पे पहुंचता है, करेक्ट? फिर क्या कहता है डॉक्टर मरीज से? ये दवाई लो, इतनी ये गोलियां हैं, ये सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, रात को एक बार लेना गर्म पानी के साथ में। साथ साथ में अभी सुबह उठकर जल्दी से सैर करने जाना, ऐसे चीजें बताएंगे, ये करना ये करना ये करना ये करना। और भी कुछ तो बताएंगे ना, क्या बताएंगे? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मीठी चीजें नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो अगर व्यक्ति को ठीक होना है तो उसको दोनों कार्य करने चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि डॉक्टर हमारी बात थोड़ा मानेगा और हम थोड़ा उनकी बात मानेंगे। एक भक्त हैं डॉक्टर, वो बता रहे थे कि एक मरीज उनके पास आए और वो व्यक्ति जो है वो बहुत शराब पीने वाला आदमी था। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अभी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर उनको कहा कि ठीक है, अभी आपको शराब पीना छोड़ना है, ये भी करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। तो फिर वो मरीज कहने लगा कि डॉक्टर, मैं आपकी आधी बात मान लेता हूं, आप मेरी बात मान लीजिए, आधी बात मान लीजिए, तो मैं दवाई भी लूंगा, शराब भी पीऊंगा। ऐसा करने से होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप रसोई घर में गए, सिगड़ी जला लिया आपने, फिर ऊपर से पानी डाल दिया, फिर जला लिया, फिर पानी डाल दिया। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? हम भोजन बनाने जा रहे हैं। अरे भोजन बनाने जा रहे हैं तो फिर जैसे आप अग्नि ये कर, फिर से ऊपर से पानी डाल रहे हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की आवश्यकता है, डूज एंड डोंट्स। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब यहां भौतिक जगत में रोगी हैं, हम सब मरीज हैं। और जो सदगुरु होते हैं या वैष्णव होते हैं वो कौन है? डॉक्टर हैं। और डॉक्टर की किताब कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि। और दवाइयां कौन सी हैं हमारी? हरि नाम और भगवान का भजन इत्यादि। और अन्य जो है वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, माइसिन मेरा पाप, पाप पाप कर करके बीमारी हो जाती है, ये दवाइयां है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह और कोई अलग अलग दवाइयां हैं, तो सब माइसिन से एंड होते हैं, मेरा पाप। सोफ्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो भी है, माइसिन। तो दोनों चीज महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी प्रवृत्ति है, निवृत्ति है। तो बताइए कि हमारे भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति क्या है, कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए? उदाहरण दीजिए, बहुत सारे हैं, बताइए। सुबह जल्दी उठना, जप करना, भागवत क्लास में बैठना, भगवान की सेवा करना, मंगल आरती में आना, प्रसाद लेना, प्रसार करना, बहुत सारे हैं। और निवृत्ति कार्य बताइए, एक बार किसी भक्त को पूछा गया था कि चार नियम क्या हैं? सो बताया, मांसाहार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, नहीं, चार नियम है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना आदि, है ना। तो ये प्रवृत्ति कार्य है कि इन चीजों को, इन चार चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या है उदाहरण? निंदा नहीं करनी चाहिए, और प्रजल्प नहीं करना है, ज्यादा खाना नहीं, क्लास में सोना नहीं चाहिए, बहुत चीजें हैं। तो ठीक है, यह है प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति अनुशीलनम है, क्रियाशील एक क्षेत्र है ये, और इसमें शरीर, मन, वाणी तीनों से कार्य किए जाते हैं, और ये दोनों प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। तो यहां इस चार्ट में जो लिखा गया, अभी आप समझ पा रहे हैं, अभी अनुशीलनम शब्द का विश्लेषण हो रहा है। अनुशीलनम है अनु और शील, अनु और शील की परिभाषा नीचे दी हुई है, ठीक है। अब शील या कार्य करना, किस प्रकार के कार्य करना? अभ्यास करना, सेवा करना, भजन करना आदि, ये तीन प्रकार से किया जा सकता है, शरीर से, मन से, वाणी से। अभी अगर पूछा जाए तो किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए, कौन से विषय का भजन करना चाहिए, किसके लिए हमें किस चीज का अभ्यास करना चाहिए, फिर ये अनु शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया, अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के पीछे पीछे चलना, अर्थात उनके पद चिन्हों में चलना। तो जो वैष्णव आचार्य हैं वो कौन से कार्य करते हैं? कोई भौतिक कार्य तो करते नहीं है, वो तो केवल भगवान की भक्ति के कार्य करते हैं। जो ऐसे कार्य करते हैं जो श्री कृष्ण से संबंधित है, तो केवल अनुशीलनम कहने से उतना काफी नहीं है, कृष्ण महत्वपूर्ण है। इसलिए इस श्लोक में क्या लिखा गया है? कृष्णानुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम, कि कृष्ण के संबंध में हमें शील, अनुशीलनम होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भौतिक चीज के बारे में नहीं। और इन तीनों स्वरूप लक्षण में से कृष्ण ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है तीनों में से। क्यों? क्योंकि ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ तो किसकी सेवा हम करेंगे, किसका भजन हम करेंगे? कोई कहेगा हम दुर्गा देवी का कर रहे हैं, कोई कहेगा हम इनका कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं। तो यहां स्पष्ट है कि अनुशीलनम है, लेकिन केवल कृष्ण का। और कृष्ण मतलब क्या, पढ़िए अगले पेज में, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। कृष्ण मतलब कौन, या कृष्ण मतलब क्या, नहीं, यहां भूमिका में क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, आप पढ़ के आए हैं ना,
समस्त कारणों के कारण, परम पुरुष समस्त कारणों के कारण।
नहीं, यहाँ जो लिखा है पढ़िए। आगे पढ़िए।
वे अपने स्वांशों, अपने अंशों तथा अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व, प्रत्येक वस्तु सम्मिलित। फिर भी सामान्यतया कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके स्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं।
इसका मतलब है कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण शब्द से बोध होता है कृष्ण के अनेक अवतार भी। तो कृष्ण जब हम कहते हैं तो ठीक है, नरसिंह देव की भक्ति भी भक्ति कहलाती है, रामचंद्र की भक्ति भी भक्ति कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये भी श्री कृष्ण के स्वांश हैं, उनके विस्तार हैं। और आगे पढ़िए, और इसका इस परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है कि कृष्ण मतलब क्या है। आगे पढ़िए।
श्रीमद् भागवतम में इन्हें असंख्य लहरों के लिए बताया गया है। अतः कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित होते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण बात। ये सेंटेंस, ये वाक्य फिर से पढ़िए।
अतः कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित होते हैं।
उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित होते हैं। तो जब यहां कहा गया है कृष्णानुशीलनम, कि कृष्ण की सेवा करो, तो कृष्ण और कृष्ण के अवतारों के साथ साथ किन की सेवा होनी चाहिए? कृष्ण भक्तों की सेवा होनी चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुपाद आश्रय जैसे उदाहरण या जैसे जो आदेश हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता, फिर वो भौतिक हो जाते। वैष्णव की सेवा करना, इनका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, इसका मतलब है कि कृष्ण या कृष्ण के विभिन्न स्वांश अवतार या फिर उनके शुद्ध भक्त, इन सब की भक्ति होनी है। श्रीमद् भागवत में या अन्य पुराणों, किसी एक पुराण में बताया गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। इस श्लोक को सुना है आपने? हाँ, कौन सा, क्या अर्थ है इसका बताइए। पूरा अनुवाद बताइए। आराधना नाम सर्वेशाम, सारे आराधनाओं में से विष्णुर आराधनम परम, सारे आराधनाओं में से विष्णु की आराधना परम है या सर्वश्रेष्ठ है। किंतु, किंतु क्या? तस्मात परतरम देवी, परतर उससे भी पर, उससे भी और परतर, तर न्याय, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तदीयानाम समर्चनम। तदीय मतलब उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, चीजें हैं, जैसे उनके भक्त हैं विशेष करके। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में बताया हुआ है कि भगवान कृष्ण या विष्णु की आराधना करना यह सर्वश्रेष्ठ आराधना है, परंतु इस आराधना से भी श्रेष्ठ एक आराधना है और वह है भगवान के भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये श्रेष्ठ है। क्यों? तदीय, तदीयानाम, क्योंकि ये भगवान से संबंधित हैं। इसलिए यहां जब कृष्णानुशीलनम ये शब्द कहा जा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण के साथ कृष्ण के शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र का उदाहरण दिया हुआ है उन्होंने, आपने पढ़ा है ना कल, तो कोई बताएंगे कुरुक्षेत्र का उदाहरण क्या है यहाँ पर? बहुत अच्छा। तो किसी चीज का महत्व तब होता है जब वो श्री कृष्ण से संबंधित होता है। कृष्ण को बीच में निकालिए, उस वस्तु का जो मूल्य है वो शून्य हो जाता है। इसके बारे में प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे, किसी को याद है? बहुत अच्छा, करेक्ट। जब शून्य का तब तक कोई मूल्य नहीं रहता है जब तक कि उसके सामने एक नहीं आता। अभी देखिए आप 10 शून्य एक के बाद एक लगाइए, 100 शून्य लगाइए, 1000 शून्य लगाइए, फिर भी वो क्या है? शून्य है। लेकिन एक शून्य के आगे भी अगर आप एक लगाते हैं 10 हो जाता है, और फिर उस एक के बाद जो शून्य है और उस शून्य के बाद और एक शून्य लगाएंगे फिर 100 हो जाएगा, फिर 1000, 10,000, फिर उसका मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। तो मूल्य क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो एक है। तो शून्य का मूल्य तब होता है जब उसके सामने एक है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दुनिया की जो चीजें हैं वो क्या है? शून्य। तो लोग क्या एकत्र करने के लिए के पीछे पड़े हैं? शून्य, है ना। और लोग एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? कि दूसरे के पास ज्यादा शून्य है, तुम्हारे पास 10 शून्य, मेरे पास केवल 8 शून्य है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी, तुम्हारे गाड़ी का पंक्चर कराएंगे। यह है ईर्ष्या, यह है संसार। सब शून्यों के पीछे लगे हैं और शून्यों की प्रतियोगिता चल रही है, स्पर्धा चल रही है। सब लोग देखना चाहते हैं किसके ज्यादा शून्य हैं। अगर ऐसे कोई कक्षा में कोई कहे, कोई विद्यार्थी बैठे हो और कोई कहे नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे पास 50 शून्य है, और दूसरा बच्चा कहे नहीं 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 मेरे पास 60 शून्य है तो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तो अध्यापक क्या कहेगा? दोनों शून्य कहेगा, ये लोग मूर्ख हैं बच्चे, है ना। 50 शून्य हो या 60 शून्य हो, क्या है? शून्य है। उसी प्रकार से दुनिया में सब लोग सोच रहे हैं शून्यपति होना चाहते हैं, लखपति नहीं, लखपति तो क्या, शून्यपति, ज्यादा से ज्यादा शून्य एकत्र करो। लेकिन भक्त बड़ा बुद्धिमान होता है, वो क्या एकत्र करता है? एक, एक मतलब कृष्ण, एक मतलब कृष्ण। और फिर उसके पास 2-4 पैसे भी हो तो 2-4 पैसों का मूल्य बहुत हो जाए, क्योंकि सामने एक आया है, इसलिए उसका मूल्य 10 हो गया अभी, क्योंकि वो पैसे वो अब कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करेगा। तो किसी भी चीज का महत्व तब होता है जब कृष्ण का संबंध होता है उस चीज से। तो यहां प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के ऋण भूमि से, और वो कहते हैं कि लोग कभी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है, ये तो केवल एक रणभूमि है, कितने सारे रणभूमि है सारे पृथ्वी पर। लेकिन महत्व है कि कृष्ण वहां पर थे, कृष्ण ने वहां पर युद्ध किया, वो और किसी भी रणभूमि के समान नहीं है। इसलिए उसी प्रकार से वृंदावन, कोई व्यक्ति कह सकता है जो नास्तिक है कि वृंदावन में क्या विशेष बात है, ये भी तो एक नगर है, शहर है, ऐसे कितने सारे शहर हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे? ये श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण का धाम है, इसलिए ये विशेष है, इसलिए कोई अन्य शहर की तरह ये नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण शब्द यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण अनुशीलनम, तो अनुशीलन होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, हमें क्रियाशील होना चाहिए, किसके संबंध में? कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के संबंध में। तो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्य ना बाद में देखेंगे, अब समय नहीं है, 5:30 हो गया, तो एक दो कोई प्रश्न आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। कल कोई प्रश्न है किसी के?
मायावादी ने बताया कि they want to merge with supreme।
हाँ,
वो तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। तो how can they merge with supreme?
आपका प्रश्न है कि जो निराकारवादी हैं वो भगवान के निराकार स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, तो वो तो केवल निराकार ज्योति तक पहुंचते हैं, तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि वो भगवान में लीन हो रहे हैं? तो आप में से कोई इसका उत्तर देंगे? आप सब शास्त्रज्ञ हैं, बताइए, उत्तर दीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है कि ये भगवान में लीन हो रहे हैं? वो निराकार ज्योति है क्या? सब सर्वप्रथम भगवान के दिव्य स्वरूप का तेज है, जैसे सूर्य की किरण सूर्य का की रोशनी वो सूर्य से संबंध रखता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म तेज भगवान के दिव्य शरीर से संबंध रखता है। ठीक, तो इसके बारे में कौन सा श्लोक बताएंगे श्रीमद् भागवत का आप प्रमाण? जैसे अदालत में वकील जो होते हैं वो कोई ना कोई अपने कानूनी ग्रंथों से कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कायदा ये है, इसके हिसाब से उनको यह सजा मिलनी चाहिए, मिलॉर्ड। हम लोग, हमारे लॉर्ड अलग हैं, लॉर्ड कृष्णा, उनके अदालत में अलग चलता है, तो वो भी अपने कानूनी ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं ना। हाँ, वो ठीक है, लेकिन विशेष करके आपके प्रश्न से संबंधित कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवत का? वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते, कि परम सत्य इसके तीन स्तर हैं, और तीन स्तर कौन से हैं? एक है ब्रह्म जो निराकार है, दूसरा है परमात्मा, और तीसरे हैं भगवान। निराकार मतलब जो ज्योति है, परमात्मा मतलब जो सबके हृदय में विराजमान है भगवान का स्वरूप, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो निराकार ब्रह्म भी परम सत्य का अंश है, क्योंकि भगवान के शरीर का ही तेज है, परंतु उनको पूरी जानकारी नहीं है परम सत्य के बारे में, उनका ज्ञान अपूर्ण है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति केवल सूरज की किरणों को जानता है, ये रोशनी बाहर देखता है कि बाहर रोशनी है, लेकिन रोशनी कहां से आ रही है उसको वो नहीं पता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति निराकारवादी हैं, वो निराकार ज्योति से आकर्षित होते हैं, लेकिन वो ज्योति आती कहां से है, उसका उद्गम क्या है, वो नहीं जानते, इसलिए उनका ज्ञान भी अपूर्ण होता है।
क्वेश्चन ये था कि मायावादी हैं, देयर ओनली लिमिटेड अप टू ब्रह्म ज्योति।
हाँ,
तो उस सुप्रीम से मर्ज कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते,
नहीं। सुप्रीम के निराकार से लीन होते हैं, जो भगवान का जो निराकार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है ना, जैसे हमने कहा परम सत्य के तीन स्वरूप होते हैं, भगवान, भगवान मतलब उनका जो दिव्य शरीर है, द पर्सन कृष्ण, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वो अपने आप को विस्तार करते हैं परमात्मा रूप में, और साथ साथ उनके दिव्य शरीर का तेज है निराकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म भगवान से अलग नहीं है, परंतु फिर भी भगवान का रूप ये श्रेष्ठ है, तो ये भगवान के निराकार में लीन होते हैं, और एक प्रकार का लीन होना भी ऐसा है जो भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, सायुज्य मुक्ति। भागवत में कौन सी कथा में आती है बताइए? शिशुपाल, जब श्री कृष्ण शिशुपाल की का वध करते हैं, तो सबके सामने, सारे उपस्थित व्यक्तियों के सामने शिशुपाल के शरीर से उनकी आत्मा बाहर आती है, और सीधे श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो जाती है। तो लीन होने के भी दो प्रकार हैं, एक निराकार ब्रह्म में लीन होना और दूसरे भगवान के दिव्य शरीर में लीन होना। लेकिन भक्तों को ये दोनों चीजें पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? सेवा नहीं रहती, निष्क्रियता है और इसमें सेवा नहीं है, अनुशीलन कृष्णानुशीलनम नहीं है, इसलिए वो पसंद नहीं करते हैं। यस परीक्षित, नहीं मानते, वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है कि निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि केवल रोशनी को जानते हैं, सूरज को नहीं जानते, उनका ज्ञान केवल निराकार तक सीमित है। शिशुपाल के लिए क्या हुआ कि वो तो वहां उपस्थित थे और सीधे सबके दृष्टि के सामने ये सायुज्य मुक्ति हो गया, परंतु शिशुपाल कौन थे बताइए? जय विजय। तो वास्तव में उनका हमेशा के लिए ऐसे लीन नहीं हुआ उनकी आत्मा, वो तो वापस चले गए, जय विजय बनकर दोनों चले गए, शिशुपाल और दंतवक्र। हाँ परीक्षित, उनके थ्रू कभी भी, जैसे हम पहले कह रहे थे, आत्मा का व्यक्तित्व क्या क्या नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। तो चाहे वो आत्मा निराकार में लीन हो जाए या चाहे भगवान के दिव्य स्वरूप में लीन हो जाए, आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मीराबाई की परंपरा हमारी परंपरा से नहीं है, तो हम उनको मानते हैं कि महान भक्त हैं, वैष्णवी हैं, लेकिन उनका जो तिरुभाव हुआ, जब तक हम कोई अधिकृत स्रोत से इसको नहीं जानते, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, टीका नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे वैष्णव संप्रदायों में भी ऐसे हुआ है कि वो जाते हैं और जैसे विग्रह में लीन हो जाते हैं, ऐसे कई उदाहरण हुए हैं, लेकिन ये केवल निमित्त है, फिर वो आत्मा वहां से फिर और गोलोक वृंदावन चली जाती है। वास्तव में भक्त कभी लीन नहीं होते, कैवल्यम नरकायते, वो ऐसे लीन होने को नरक से भी अधिक तुच्छ समझते हैं, नहीं चाहते हैं लीन होना भगवान में।
जैसे कि श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है, वो पद्म पुराण से अधिकृत है या नहीं, प्रभुपाद ने इसको कोई कमेंट नहीं किया?
ये प्रश्न तो ठीक अलग, थोड़े विषय से हटकर है। पुराण तो है इसलिए अधिकृत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। आखिर ये पुराण तो प्रामाणिक है, पद्म पुराण है, तो ये नहीं कह सकते हम कि ये नहीं है ठीक। परंतु जब प्रभुपाद ने ऐसे व्याख्यानों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया है, तो हम उसके पीछे नहीं जाते हैं। कभी कभी अलग अलग पुराणों में अलग अलग जोर दिया जाता है, अलग अलग दृष्टि के अनुसार, अलग अलग लोगों के लिए, इसलिए हमें अनुशीलन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों में चलने से हम सुरक्षित रहेंगे, फिर हम जान जाएंगे कि वास्तव में स्पष्ट क्या है लक्ष्य, नहीं तो यहां वहां चलने की संभावना रहती है। तोट गोपीनाथ, हाँ आगे बोलो।
तो इसमें क्या, जैसे मतलब वो उसके अंदर जा भगवान ही थे तो भगवान दो रूप हो गए एक हो गए तो क्या फिर अपने गोलोक धाम की दूसरी नौ दिन वाले हिस्से
में? ये एक लीला है, जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं और इस प्रकार का उनका तिरुभाव होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि एक प्रकार की लीला है। भगवान तो स्वधाम लौट के जाएंगे सीधे, लेकिन उनको कोई अद्भुत ऐसे तिरुभाव करके दिखाना है ताकि लोग जाने सत्य क्या है। जिस प्रकार से भगवान का जन्म तथाकथित जन्म अद्भुत होता है, जैसे कि श्री कृष्ण का हुआ, उसी प्रकार से उनका तिरुभाव भी अद्भुत होता है। लेकिन आखिर में भगवान तो गए कहां? स्वधाम। ठीक है, तो आज कथा यहीं विराम करते हैं और कल से थोड़े स्पीड में जाएंगे। ठीक है ना, आज ज्यादा स्पीड लगा आपको, ज्यादा फास्ट लगा? हाँ, कल से थोड़ा ज्यादा लगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, हरे कृष्ण।